नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे दैट इज अ कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जब हम बात करें कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया कि दो चीजें, दो कण, हमने कहा कि यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तुएं जो आपस में किसी दूरी पे रखी हुई हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो क्यों पृथ्वी जो है वो सन को या बाकी ग्रहों को या इतने सारे सौर मंडल में इतने सारे तारे हैं उनको आकर्षित क्यों नहीं करती है? या आपकी धरती जो है, क्योंकि सभी, हमने कहा कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु में जो कोई दो वस्तु हैं, उन दोनों के बीच में एक बल जो वो कार्य करता है, तो फिर पृथ्वी किसी और जो ग्रह है या कोई पिंड है या सन है उसके प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो जाती है? तो जब ये प्रश्न उनके मन में उठा, तो यहाँ पे जो है पहले प्रश्न उठा, तो पहले सबसे पहले जो बात हुई कि सबसे पहले तो ये माना जाता था कि खगोलीय पिंड जो भी हैं वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उस टाइम तक तो ये लगता था कि सब चीजें पृथ्वी के अराउंड घूम रही है और पृथ्वी जो वो स्टेबल है। मगर जब बाद में जब ये देखा गया, तो पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में ये बताया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी की कोई परिक्रमा कर रहा है। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो ने भी इस बात की पुष्टि करी, और इसकी पुष्टि करने पे जब देखा लोगों ने, क्योंकि इतना वो जो उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था, वो इतना समर्थन करते थे अपने कॉन्सेप्ट को कि नहीं, पृथ्वी के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं और पृथ्वी चपटी है, तो उन्होंने गैलीलियो को वहां पे मतलब कि ये कहा कि आप र्यूमर्स ना फैलाएं। मगर जब उन्होंने अपनी थ्योरीज को लिखा, तो उसके बाद उन्हें पनिशमेंट भी दी गई एक तरह से। मगर जब धीरे धीरे इसके ऊपर काम किया गया, तो आपके जो यूरोपीय खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने बाद में जो है कैप्लर ने जो है वो आपके इस चीज को माना, और इसके लिए उन्होंने फिर अलग से जो है वो नियम लॉज जो है वो स्थापित किए। तो जिन्होंने लॉज स्थापित किए, दैट वाज अ जोहन्स कैप्लर, और ये जोहन्स कैप्लर जो है वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपना जो भी है ये एक एज ए साइंटिस्ट इन्होंने अपना काम शुरू किया, और बाद में इन्होंने 16 वर्षों की अवधि के विश्लेषण एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशंस करके, तब उन्होंने जो है वो नियमों को यहाँ पे परिभाषित किया। तो अगर हम लोग बात करते हैं कैप्लर के ग्रहों की नीति की, कि क्यों ग्रह जो है वो पृथ्वी में आकर्षित होके नहीं गिरते हैं, और क्यों पृथ्वी जो है वो उनके प्रति आकर्षित नहीं होती है, तो इन्होंने कहा कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों का गति पथ है, जो वो मूव कर रहे हैं, वो आपका पहली बात है कि एलिप्स है, ये गोल नहीं है। दूसरा, ये आपको पता है कि एलिप्स के हमेशा दो फोकस होते हैं, तो वो किसी एक फोकस पर विद्यमान है, तो आपका जो ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट है वो एलिप्स है, और सन जो है वो किसी एक फोकी पे वहां पे स्थित होता है। अब देखिए, आपको जो एलिप्स है, तब आप खुद जज कर सकते हैं कि आपके जो फोकस हैं वो दोनों एजिस पे होंगे, और जब आपका सन जो है वो किसी एक फोकस पर है, तो उस केस में आपका जो है वो डिस्टेंस जो है सन का, वो ऑर्बिट से किसी एक टाइम पे नजदीक होगा और किसी एक टाइम पे बहुत दूर होगा। तो इन्होंने दूसरी बात जो कही वो ये कही कि सूर्य से ग्रह तक खींची गई रेखा, मतलब जिसे हम त्रिज्या भी कहते हैं, समान अवधि में समान क्षेत्रफल समाहित करती है। मतलब कि वो जो भी हमारा आर्क बनेगी, वो आपकी छोटी बड़ी जाए जैसे भी बने, मगर उसके लिए आपका जो क्षेत्रफल जो बनेगा वो आपका पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो सेम ही होगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर क्षेत्रफल सेम रहना, तो आपकी आर्क छोटी या बड़ी होगी, मगर टाइम आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। और थर्ड जो उन्होंने बात करी थी अपने लॉज के अंदर, उन्होंने कहा था कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय का वर्ग, जो भी ग्रह है, चाहे वो हम पृथ्वी की बात कर लें, शुक्र की बात कर लें, जुपिटर की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, तो जो भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसको अपनी परिक्रमा पूरा करने के लिए जो समय लगता है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो वो सूर्य के उस ग्रह की औसत दूरी के घन का अनुक्रमणपाती होता है। अनुक्रमणपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, टी का स्केयर, टी इज द टाइम जिसमें वो परिक्रमा पूरा कर रहा है, उस परिक्रमा के लगने के समय का वर्ग वो हो गया टी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो आपका सूर्य और उस ग्रह के बीच की औसत दूरी है उसके औसत दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको जब ये हम देखेंगे कि इस चीजों से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी जो आपका परिक्रमण काल है वो निकाल सकते हैं हम लोग, आपका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो जो चीज मिसिंग होगी वो हम लोग वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने पेज नंबर 129 पे देखेंगे कि हमारे अलग अलग ग्रहों का नाम दिए गए हैं, उनके साथ सूर्य के मध्य जो दूरी है और उनका जो अपनी त्रिज्या है, उस ग्रह की जो त्रिज्या है वो, और उसका द्रव्यमान जो पृथ्वी की तुलना में है वो हम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको बेस में मानते हुए हम लोग बाकी कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रहों का कक्षीय वेग। तो ग्रहों का कक्षीय वेग क्या होता है, पहले बात है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट क्या होता है। तो मिनिमम वेलोसिटी एट विच ए बॉडी मस्ट मूव टू मेंटेन ए गिवन ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर कक्षा में बने रहने के लिए एक पिंड को जो आप वेग की आवश्यकता, जो वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं या फिर उस वेग को हम कक्षीय वेग कहते हैं। अगर हम लोग, अभी हमें पता है कि परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल जो होता है आपका वो किसी भी आपका जो ग्रह है उस ग्रह के, अगर उसका उपग्रह है या उस ग्रह के इर्द गिर्द कोई भी पिंड मान लेते हैं चक्कर लगा रहा है, तो कोई ग्रह जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो कुछ भी हम मान के चले, तो उस चक्कर को पूरा करने के लिए, एक चक्कर को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उस समय को हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि परिक्रमण काल टी है तो दूरी आपकी आर है, तो टी समय में हम कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, दैट इज द 2πr, वो आपको पता ही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग आपका इससे सर्कमफ्रेंस से निकलेगा एंड दैट विल बी 2πr। तो उस केस में जब हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपका क्या हो गया वेलोसिटी, आप कक्षीय वेग को जो है वो आप देख सकते हैं 5.16 में हमने बात करी हुई है, दैट इज 2πr/t। दिस इज वन मेथड जब हमें त्रिज्या पता है और जो टाइम है परिक्रमण काल अगर उसका पता है तो हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उस केस में, अगर हमें ग्रह पर लगे अभिकेंद्र बल का मान mb²/r है, जहां m इसका द्रव्यमान है, तो ये बल जो है वो आपका सूर्य एवं ग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। तो उस बल को हम लोग लिख देते हैं gmms²। ये हमने ग्रेविटेशनल बल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ये दोनों ही क्योंकि आपके ग्रेविटेशनल बल हैं तो दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों को यहाँ पे 5.17 में देखें, आपकी आपने इन दोनों को जब इक्वेट किया तो आपका कक्षीय वेग जो निकला वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √g, दैट इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ms मास आपका सन का, डिवाइडेड बाय r². तो जो चीजें हमें पता हैं हम उनके बिहाफ पे जो है वो अपना कक्षीय वेग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी कक्षीय वेग है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि जो पिंड हमारा चक्र लगा रहा है उस पे निर्भर नहीं करता है, मगर जिस पिंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उसके साथ जो उसकी दूरी है सूर्य से ग्रह की दूरी या उस पर्टिकुलर पिंड की जिसके इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहा है उससे उस पिंड की दूरी जो है उस पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से आगे, दैट इज द पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब आप देखिए, आपने कई बार देखा होगा जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि हमने एक गेंद ऊपर गिराई और वो नीचे आ गई। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल लॉ दिया तब भी उसके दिमाग में यही बात आई कि क्यों सेब जो है वो धरती की तरफ खींचा आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, और उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ की वहां पे खोज की। अब अगर हम लोग ज्यादा वेलोसिटी से जब फेंकते हैं तो क्या होता है? आप किसी गेंद को अभी ऊपर की ओर फेंकिए, आप जितनी फोर्स से फेंकेंगे वो उतना ऊंचा जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, जितनी ज्यादा आपकी फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स से आप वो और उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद एक हाइट के बाद वो वापिस धरती के ऊपर आ जाएगी। परंतु क्या ये भी संभव है कि आप इतने जोर से या इतनी फोर्स के साथ, इतने बल के साथ किसी वस्तु को फेंकें कि वो धरती के वायुमंडल से ही बाहर हो जाए, धरती के कक्ष से के आकर्षण प्रभाव से ही बाहर हो जाए? जो ग्रेविटेशनल पुल है, आपने देखा होगा अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो है ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, पृथ्वी से कक्षा जो आकर्षण केंद्र है उससे बाहर होते ही चीजें जो है वो अपने आप में फ्री हो जाती हैं, और वो जो आपका यूनिवर्सल लॉज जो है फिर वो वहां पे वो काम करते हैं, आपका ग्रेविटेशनल लॉ वहां पे काम नहीं करता है। तो आपका जो एक वायुमंडल है इसे कह सकते हैं, उसी के अंदर जो है वो आपका जो है वो आकर्षण का प्रभाव है। तो ऐसा संभव है क्या कि आप किसी वस्तु को इतने वेग से फेंके कि वो आपका आकर्षण केंद्र से बाहर निकल जाए? और आप कहेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, आपके जो आकर्षण केंद्र से बाहर हैं चीजें जो वो आपकी धरती की तरफ आकर्षित नहीं हो रही हैं, या फिर वो ब्रह्मांड में अपने ही अलग से तरीके से घूम रही हैं, और किसी वस्तु को जो पृथ्वी में है और पृथ्वी से हमें उसे बाहर फेंकना है, उसके लिए वस्तु को एक ऐसा वेग देना पड़ता है, ऐसी वेलोसिटी के साथ उसे हिट करना पड़ता है जिससे कि वो उस आकर्षण प्रभाव क्षेत्र से बाहर चली जाए, और वो वेग जिस वेग के द्वारा वो जो है वो आपका आकर्षण प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप भी आपका जो है वो एक तरह से आप उसी से समझ सकते हैं कि निकलना, आकर्षण केंद्र जो है आपका आकर्षण प्रभाव क्षेत्र से उससे बाहर निकलने के लिए जो हमें वेग की आवश्यकता है उसे हम पलायन वेग कहते हैं। और आपको इसे हम और अच्छे से समझाएं तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह बाहर निकल जाने के लिए वस्तु को ऊपर की ओर जितने न्यूनतम, कम से कम, ज्यादा तो आप उससे कर सकते हैं मगर उससे कम अगर आप करेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो कम से कम जो वेग है से फेंके जाने की आवश्यकता को हम पलायन वेग कहते हैं, और यही आपके पलायन वेग की परिभाषा भी है। अब जो है आपका पलायन वेग है वो देखिए उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिससे वस्तु दूर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है, तो आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका ग्रेविटेशनल पुल होगा, उतना ही ज्यादा आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो आपका जो है वो इस बात पे, पलायन वेग जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो वस्तु है वो कितना बड़े द्रव्यमान की है, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसलिए पलायन वेग भी आपका ज्यादा होगा। ये पिंड की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा त्रिज्या होगी तभी तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, और ज्यादा त्रिज्या वाले का जो है वो आपका पिंड का गुरुत्व बल भी अधिक होता है। अब अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, अगर हम इसे लिखना चाहें तो वी कैन राइट पलायन वेग जो है, जिसे हम वी पलायन या वी एस्केप से भी लिख सकते हैं, तो वो जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अब मैं आपका मास ऑफ द बॉडी है जिसके आकर्षण केंद्र से आपको बाहर निकलना है, और जो है वो आपकी त्रिज्या है जिसका जिसके गुरुत्वीय बल से आपको निकलना है। और आप देखिए कि यहाँ पे एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। इस सूत्र की सहायता से हम अन्य आकाशीय पिंडों के लिए भी पलायन वेग ज्ञात किया कर सकते हैं, क्योंकि हम एम यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो अगर मुझे किसी और का पलायन वेग निकालना है तो मैं उसका मास लिख दूंगी, उसकी त्रिज्या कैलकुलेट लिख दूंगी, एंड वी विल कैलकुलेट एंड वी विल फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी है आपका पलायन वेग है, ऊपर जब भी हम उसको किसी वस्तु को पलायन वेग से ऊपर फेंकेंगे तो उस पर गुरुत्व बल नहीं लगता, ठीक है, और वस्तु का वेग और इस पर लगने वाला गुरुत्व बल दोनों वस्तु के सतह से दूर जाने पर कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये ऊंचाई और गहराई और अक्षांश के साथ बदलता है, तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो कम होने लग जाते हैं, और एक ऐसे स्थान पर जब वेग आपका शून्य होने से पूर्व बल शून्य हो जाते हैं और वो अपने गुरुत्व बल के खिंचाव से परे हो जाती है। आप इसे अलग अलग एग्जाम्पल से इसे देख सकते हैं, और इसी परिकल्पना के बेस पर हमारे पास जो है वो हमने कृत्रिम बल उपग्रह बनाए हुए हैं, और जो कृत्रिम उपग्रह है वो हमारी कक्षा से बाहर नहीं होते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। पर आपने कभी सोचा है कि अभी आप कहीं बैठे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप कहीं भी मैच होता है आप उसे घर पर देख रहे होते हैं, तो क्या वजह है, किस वजह से हम लोग ये देख पाते हैं? ये देख पाते हैं हम लोग अपने कृत्रिम उपग्रहों की वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से। और ये सैटेलाइट्स होते क्या हैं? वो पिंड, या हम लोग कह सकते हैं क्योंकि आप इसको, ये मशीनरी है आपकी, तो ये सैटेलाइट्स जो पृथ्वी का परिक्रमण कर रहे हैं, ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं। देखिए, एक उपग्रह हमारा है चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर आपका चक्कर काट रहा है, सिमिलरली जैसे पृथ्वी जो है वो आपका सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। जो पृथ्वी है वो अपने घूर्ण के इर्द गिर्द भी चक्कर काट रही है और सन के इर्द गिर्द भी चक्कर काट रही है, तो अपनी कक्षा अपने घूर्ण के इर्द गिर्द काटने की वजह से उसके जो है वो दिन रात बनते हैं, जबकि आपके सन के आसपास का चक्कर काटने की वजह से वहां पे ऋतुएं बनती हैं। सिमिलरली आपके पास चंद्रमा है जो आपका पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह ले रहा है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, मगर इसी के देखरेख में हम लोगों ने एक कृत्रिम उपग्रह बनाए जो कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर छोड़े गए, जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका जो भी मतलब हमारी उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं और अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह के उपग्रह हम लोग वहां पे छोड़ते हैं। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि कैप्लर के नियम, जो कैप्लर के जो नियम है, प्लैनेटरी जो नियम है, वो जो प्लैनेट्स के लिए भी काम करते हैं, बाकी पिंडों के लिए भी काम करते हैं, और हमारे कृत्रिम उपग्रहों को भी के लिए भी काम करते हैं। तो आपका जो एक कृत्रिम उपग्रह का कक्ष भी कैप्लर के नियमों का पालन करता है, क्योंकि नियामक बल जो है पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ये बल है वो वही है, और उसको उन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है, और उपग्रह का परिक्रमण पथ जो मैं अभी अभी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि जो एक पर्टिकुलर एक चक्र को कम्प्लीट करने के लिए जो आपका लगता है समय, उसे हम परिक्रमण समय कहते हैं, तो वो जो आपका पथ है वो आपका एलिप्स है, और ये हमेशा जो है वो पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। अगर हम बात करें कि हम कृत्रिम जो उपग्रह है उनको कक्षा में कैसे स्थापित करते हैं, तो देखिए उसके लिए एक पर्टिकुलर कैलकुलेशंस होती हैं, उन कैलकुलेशंस के बेस पे अगर देखा जाए तो एक उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने के लिए सबसे पहले उसे लगभग 200 किलोमीटर ऊपर उठाया जाता है, और फिर 8 किलोमीटर पर सेकंड, देखिए कितनी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में उसे 8 किलोमीटर मूव करना है, के बेग से क्षैतिज दिशा में उस पर एक धक्का दिया जाता है ताकि वो अपना जो एक कक्ष में जाके स्थापित हो जाए। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि 200 किलोमीटर ही क्यों? तो 200 किलोमीटर जो है वो हम वायुमंडल से ऊपर इसे उठा लेते हैं, ताकि जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसेस है और उन गैसेस की वजह से जो घर्षण होगा, उस घर्षण के कारण जो ऊर्जा जो नष्ट होगी, उस ऊर्जा के क्षय को हम जो है वो कम से कम यहाँ पे कर सके। इसी तरह से जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमें, देखिए, अगर हमें कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में रखना है, अपने इसके इर्द गिर्द घुमाना है पृथ्वी के, तो ये पक्का पलायन वेग से कम होना चाहिए। अगर ये पलायन वेग के बराबर या पलायन वेग से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वो आकर्षण केंद्र से बाहर हो जाएगा, और जो आकर्षण के जो क्षेत्र है उसके बाहर होते ही वो जो है वो आपका उपग्रह जो है, जो कृत्रिम उपग्रह हमने बनाया है किसी पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए, वो हमारी अपने आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और वो हमारी पहुंच से भी बाहर हो जाएगा। तो जो इसकी जो हमने बात करी थी, जो आपका कक्षीय वेग है कि वो एक कक्षा, जिस कक्षा में हम उसे बनाए रखना चाहते हैं, उस कक्षा में बनाए रखने के लिए जो कक्षीय वेग की हमें आवश्यकता होगी वो हमारे पलायन वेग से कम होगी, और जिस कक्षा में हम बनाने रखेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। अब वो क्योंकि अब उसका कक्षीय वेग जो है पलायन वेग से कम है, तो वो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र से अलग हो जाएगा और अलग नहीं होगा, और वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जो है वो आपका जिस उद्देश्य से वो परिक्रमा कर रहा होगा, फिर उस उद्देश्य को वो वहां पे कंप्लीट करेगा। जो कृत्रिम उपग्रह है वो प्राय आपके दो प्रकार के कक्ष होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कक्षीय वेग का, तो इसका मतलब पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में हम उसे छोड़ेंगे, और जो ऑर्बिट होते हैं वो दो तरह के ऑर्बिट होते हैं, एक आपका पोलर ऑर्बिट है और दूसरा आपका इक्वेटोरियल आपका ऑर्बिट है। एक को हम लोग कह सकते हैं कक्ष जो है वो आपका ध्रुवीय है, ध्रुवीय कक्ष है, और दूसरा जो है वो आपका भूसमकालिक जो है भूमध्य रेखीय कह सकते हैं, विषुवत रेखीय जो है वो कह सकते हैं हम लोग वो कक्ष है। तो दो तरह के उसमें कक्ष हैं, और आप अगर कक्ष को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि चित्र नंबर 5.9 में पेज नंबर 134 पर आपको दोनों कक्ष दिखाए गए हैं, एक आपका ध्रुवीय कक्ष है और एक आपका भूमध्य कक्ष है। तो आपके जो किस कक्ष पे आप रखना चाहते हैं, इस कक्ष के हिसाब से आप उसका कक्षीय वेग रखेंगे, और ये कक्ष वेग भी जो है, जो ये कक्ष है पोलर ऑर्बिट्स या इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स, ये भी हमारे पर्टिकुलर किसी उद्देश्य के हिसाब से होते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से हम लोग उपग्रह को छोड़ते हैं। तो जो दूर संवेदन के कार्यों के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो आपके पोलर ऑर्बिट्स में होते हैं, और इन कक्षों की जो ऊंचाई होती है वो कम से कम आपकी 800 किलोमीटर होती है, और अगर आपकी 300 किलोमीटर से कम की ऊंचाई वाले हों तो वो वायुमंडल में कणों के द्वारा उत्पन्न घर्षण के कारण उपग्रह की ऊर्जा का क्षय करते रहते हैं, और जिसके कारण ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी तो धीरे धीरे वो और अट्रैक्शन होगी और नीचे आएगा और एक टाइम के बाद वो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो इनकी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा आपका 800 किलोमीटर होती है, और अगर हम बात करें उपग्रहों के परिक्रमण काल की तो ये लगभग 100 मिनट है। ये एक ध्रुवीय उपग्रह को सूर्य समकालिक बनाया जा सकता है और बनाया जाता है, ताकि वो प्रतिदिन नियत समय पर एक ही अक्षांक पर पहुंचे। जिस तरह से आपका सूर्य घूम रहा है उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, ताकि वो उसका लैटिट्यूड जो हो वो सेम हो, ताकि वो चक्कर लगाने पर संपूर्ण पृथ्वी की जो स्कैनिंग है उस स्कैनिंग को कर सके और उस चीज को आपको बता सके। ये उपग्रह क्या क्या करते हैं, मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के लिए आंकड़े प्राप्त करते हैं, बाढ़, फसल, जंगल में लगी आग आदि चीजों की जानकारी हमें देते हैं। जो दूसरा उद्देश्य है हमारा वो है दूरदर्शन संकेतों एवं दूरभाष संकेतों के परावर्तन के लिए उपग्रहों को बहुत ऊंचाई पर भूमध्य रेखीय कक्ष में स्थापित किया जाता है। ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से आप हमें सुन पा रहे हैं, किस तरह से हम लोग टीवी पे डिफरेंट इतनी दूर दूर हो रही चीजों को देख पाते हैं, तो वो जो आपका उपग्रह है वो आपका भूमध्य रेखीय कक्ष में स्थापित होने वाले उपग्रह हैं। इन उपग्रहों को हम लोग भू समकालिक भी कहते हैं और इनका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है और इनकी ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर के लगभग रखी जाती है। और क्योंकि इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने कक्ष पर प्रक्रमण काल से मेल खाता है इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। इसलिए ये सैटेलाइट जो है वो हमें घूमते हुए नहीं दिखाई देते क्योंकि ये दोनों जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट घूम रहा है। तो सैटेलाइट जब हम विद रिस्पेक्ट टू धरती के रिस्पेक्ट में धरती से जब हम उसे देखेंगे तो वो हमें स्थिर ही दिखेगा क्योंकि दोनों दो जब आपकी बसेस अगर एक ही गति से आमने सामने चलती रहे तो आपको दोनों ही जो हैं वो आपको कांस्टेंट दिखेंगी। तो सिमिलरली क्योंकि दोनों एक ही गति से आपका चक्कर लगाते हैं तो ये आपका जो है वो हमें स्थिर अवस्था में दिखता है। और ऐसे ही तीन उपग्रहों का संयोजन किया गया है जो कि हमारी पूरी पृथ्वी को देख सकता है और इसके द्वारा पूरी पृथ्वी में एक जगह से दूसरी जगह संकेत भेजे जा सकते हैं। चूंकि एक भूसमकालिक उपग्रह हमेशा पृथ्वी में एक ही स्थान का अवलोकन करता है इसलिए इसे किसी लंबे समय में विकसित होने वाली घटना के निरीक्षण जैसे तेज आंधी तूफान का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, एक स्थान पे अवलोकन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर उसको देख सकेगा। अब जो हमने कहा कि हमारे उपग्रह जो है कृत्रिम उपग्रह जो है दो कक्षों में बनाए जाते हैं, एक आपका ध्रुवीय कक्ष है दूसरा आपका मध्य रेखीय कक्ष है और जो इसके उपयोग हैं वो अलग अलग होते हैं। एक में हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका जो पर्टिकुलर जो आपकी जानकारी है मौसम संबंधी जानकारी उसके बारे में भविष्यवाणी करता है जबकि दूसरे में अगर हम लगातार किसी पर्टिकुलर एक ही जगह का पर्टिकुलर हम लोग कुछ देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो जो उपग्रहों के उपयोग हैं देखो ये मौसम संबंधी हमें भविष्यवाणियां करता है जैसे कि उपग्रह सभी प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करते रहेंगे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक भविष्यवाणियों के विषय में उपयोगी होते हैं। एक का मैंने आपको बताया कि वो आपका घूम रहा है तो आपके हर एक अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है वो बताएगा जबकि एक जो आपका सिर्फ पृथ्वी के समकालीन घूम रहा है तो वो आपको एक तरह से स्थिर एक पर्टिकुलर जगह का देख रहा है। तो आपको जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों के बारे में पता करता है। सूर्य शनि या समचंद्र में जब आप मौसम के चार्ट देखते हैं तो ये हमारे उपग्रह द्वारा ही भेजे गए होते हैं जहां पर हमारे देश का जो ज्यादातर हमारे देश ही नहीं इवन की सभी का जहां वर्षा पर हमारा फसलें निर्भर करती हैं तो वो मॉनसून संबंधी जानकारी भी हमें उपग्रहों से ही मिलती है। अब आपका दूर संचार है जो उपग्रह सैटेलाइट से ही सिग्नल्स भेज भेज के हम लोग जो अपने दूरभाष संकेतों को संसार में किसी भी जगह में भेज सकते हैं जैसे कि हम लोग आप सोचिए कि आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकते हैं, देश के किसी भी कोने को छोड़िए आप दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो उपग्रहों के कारण है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये आपका वैज्ञानिक शोध में जो आपका हम साइंटिस्ट है तो हमारे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है अंतरिक्ष में कितने सारे आपके तारे हैं कितने सारी उल्काएं कितने पिंड हैं कितने सूरज कितने आकाश गंगाएं हम बता भी नहीं सकते। तो उनके बारे में जब हमें शोध करना है उनके बारे में जानकारी लेनी है तो वो भी हमें कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त होती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश की सुरक्षा का है जो आपका सैन्य विधियों का गतिविधियों है उनका निरीक्षण भी हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग इससे ऑब्जर्व कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन जो क्या किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं तो वो हम कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा वहां पे फोकस कर सकते हैं और हम लोग गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह का खर्चा बहन कर सकने सक्षम सभी लोग देशों के पास अपने उपग्रह सभी लोगों के पास है और वो इसलिए है क्योंकि वो वहां पे अपना जो है वो निकाल सके। इसी तरह से कुछ उपग्रहों के संयोजन से किसी स्थान के बारे में बहुत सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है जैसे कि हम अगर रास्ता भटक गए हों और खो गए हों तो जो उपग्रहों की सहायता से बड़े बड़े भूखंडों के विस्तृत जानकारी देने वाले मानचित्र बन जाते हैं और उन मानचित्रों के द्वारा ही हम लोग जो है वो अपना जो डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं जैसे कि आपने GPS वगैरह जो आप यूज करते हैं दैट इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ द सैटेलाइट्स तो उसी के द्वारा हम लोगों को वो जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन जो है वो इन सब चीजों को संभालता है. वो संभालते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. और ये हमारा भारत एक बहुत ही बड़ा और घनी आबादी वाला देश है, जो कि आपका अधिकतर जो है वो आपका गांव में बसा हुआ है. और हमारा जो बहुत सारा जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका मानसून तथा वर्षा पर आश्रित है. इसलिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सरकार जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, और उसने एक तरह से पूरा वहाँ पे एक सिस्टम बना रखा है. तो इनकी संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है. हमारे भूखंड पर कई स्थानों पर खनिज तेल या गैस की उपस्थिति है, उसका पता लगाने के लिए भी हमें उपग्रहों की है. तो ये सारा जो चीजें हैं ये कहाँ पे जो आपका कंट्रोल होता है, तो जो उपग्रह तकनीक है इन सभी समस्याओं का कम खर्चीला समाधान प्रस्तुत करती है. और इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसकी स्थापना की. और इस इसरो ही जो है वो कृत्रिम उपग्रह का जो है वो देखरेख करता है, और उनके दूर संचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञानी सेवाओं, दूर संवेदी, वैज्ञानिक संसाधन के लिए अंतरिक्ष प्रणाली का विकास करने की दृष्टि से जो भी है, जो भी डिसीजन से या जो भी पॉलिसी, जो भी कार्य उन्हें करना होता है वो इसरो द्वारा ही किया जाता है. इसने ध्रुवीय एवं जो भी उपग्रह छोड़े गए हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं अंतरिक्ष में, वो आपका इसरो ही करता है. इसने ही ध्रुवीय एवं भू समकालिक उपग्रहों को छोड़ने के लिए प्रक्षेपण यानों का सफलतापूर्वक विकास कार्य किया. मतलब कि देखिए, अगर हमें उपग्रह छोड़ने हैं जो एस्केप वेलोसिटी से, वो कैसे छोड़े जाएंगे, उनके लिए हमें जो है वो प्रक्षेपण यान जो उन्हें ऊपर तक लेके जाएंगे और उस वो छोड़ के आएंगे, उनका करा जो कैलकुलेशंस करनी है कि कितने प्लाइन बेग से छोड़ना है, कितने कक्षीय बेग उसका होना चाहिए, कितना हमारा प्लाइन बेग है ताकि उससे कम उसे रहा जाए, जो वो बारीक बारीक कैलकुलेशंस होती हैं. एक छोटी सी चूक भी यहाँ पे हमें बहुत भारी पड़ सकती है, जिसमें हमारा करोड़ों का नुकसान हो सकता है. तो बहुत बारीकी से जो काम किया जाता है वो इसरो द्वारा किया जाता है. भारत में इसने दूसरे देशों जैसे जर्मनी, बेल्जियम, कोरिया आदि सभी ने प्रक्षेपण किया है उपग्रहों का, और इन्होंने अंतरिक्ष में छोड़े भी हैं. तो भारत ने भी कई उपग्रह जो छोड़े हैं हमारे अंतरिक्ष में. तो आपका जो वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो इसरो जो कार्य करती है, जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कार्य करता है, वो मौसम, पर्यावरण और वैश्विक बदलाव को नोट करता है, ऊपरी वायुमंडल की जानकारी देता है, खगोल की एवं खगोल भौत की अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसके बारे में बताएगा, भारतीय समुद्र जो नौसेना हमारी है या जो हमारी सेना है, यहाँ तक भी जो भी हमारी गतिविधियां उनके बारे में वो पूरा वहां पे ऑब्जर्व करता है, और उस ऑब्जर्वेशंस को वो वहां पे ध्यान में रखते हुए अपनी जो है वो आपकी कूटनीति कह सकते हैं या अपनी नीतियों का वहां पे स्थापन करता है. गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत हमने पार्ट टू में जो है वो ये पढ़ा कि जो आपका कृत्रिम उपग्रह है वो क्या होते हैं, और कैप्लर के नियम जो हैं वो हमने पढ़े, तीन नियमों के बारे में पढ़ा. तीनों नियमों के अनुसार जो है वो आपका हमने जाना कि किस तरह से जो डिफरेंट आपके ग्रह हैं उन ग्रहों का एक दूसरे के साथ कैसे कक्षीय ऑर्बिट में रहते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने उपग्रहों के बारे में बात करी, किस तरह से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा सारे के सारे कृत्रिम उपग्रहों को संभाला जाता है, और उस कृत्रिम उपग्रह को हमारे डिफरेंट उद्देश्यों जैसे कि आपका मौसम, पर्यावरण, खगोलीय जो आपकी घटनाएं हैं उनके बारे में, या हमारा जो सेना है दुश्मनों के ऊपर निगरानी रखना, अपने खनिजों का पता करने के लिए हमारा उपयोग किया जाता है. और इसके साथ ही हम लोग चर्चा को समाप्त करेंगे. धन्यवाद.